भक्ति भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 27 और 28। अपभक्ष कतिचित् मासान् वायु भोजन आराधयन् मन्त्रमम् इमम् अभ्यसयन्तः इडपतिम्। ॐ नमः नारायणाय पुरुषाय महाआत्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णयाय महाहंसाय धीमहि। अभक्षा कति चित्तम् मासान् कति चेद्वायु भोजनः आराध्यान् मन्त्र इमम् अभ्यसयन्त इडपतिम्। ॐ नमः नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णयाय महाहंसाय धीमहि। अभक्षा कतिचित् मासान् कति चेद्वायु भोजनः आराध्यन् मन्त्र इमम् अभ्यसयन्त इडपतिम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णयाय महाहंसाय धीमहि। अभक्षः केवल जल पीते हुए कतिचित् मासान् कुछ महीनों तक, कतिचित् कुछ समय, वायु भोजना वायु खाते हुए अथवा केवल श्वास लेते हुए, आराधयन पूजा की, मंत्रमम इमम इस मंत्र का जो नारायण से अभिन्न है, अभ्यसयंत अभ्यास करते हुए, इडपतिम सभी मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु को, ओम हे प्रभु, नमः सादर नमस्कार। नारायणाय नारायण को, पुरुषाय परम पुरुष को, महाआत्मने उच्च परमात्मा, विशुद्ध सत्वधिष्णाय सदैव दिव्य भाव में स्थित रहने वाले, महाहंसाय महान हंस के समान भगवान को धीमहि हम सदैव अर्पित करते हैं। संवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की, प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाया, इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं, चूंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहां पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। लोगों को ऐसी विधि की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु उन्हें कम से कम चार अवांछित तत्वों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में उसे समुद्र के जल में स्नान करना चाहिए। ये तपस्या का ही एक अंग है, इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने दो अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना करी है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर नवद्वीप में। वहां पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है, इस तरह सिद्ध बनकर भगवान धाम वापस जा सकता है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाया। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जाप किया कि हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। प्रभुवाजी लिखते हैं, इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। मीन्स तप, तुमने पिछली बार तप पे चर्चा करी थी, मुझे याद है दो हफ्ते पहले। तपस्या की जब बात आती है तो आज के भौतिक संसार में हम सब लोग फेल हो जाते हैं। इवन सतयुग के अंदर भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहां तप करते करते ऋषि मुनि भी फेल हो गए थे। हमने सबसे लाइव एग्जाम्पल किसका है, मतलब बिना सोचे मस्तिष्क में एक ही नाम आता है, विश्वामित्र जी का। उन्होंने तपस्या किस लिए करी, व्हाट वाज द पर्पस, बिगिनिंग कहां से करी उन्होंने, किस लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। राज ऋषि थे परंतु ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे वशिष्ठ जी को देखकर। वशिष्ठ जी को जो है ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त है, तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए, परंतु उलझन में आ गए। जब भी कोई तपस्या करता था तो उसका जो है रिजल्ट क्या होता था कि इंद्र का आसन डोल जाता था, कहीं ये मेरा स्थान प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और इंद्र जो है उसके लिए फिर चाल चलता था। तो यहां भी इंद्र ने चाल चली, क्या चाल चली उसने, मेनका को भेज दिया, जाइए उसका तपस्या भंग करिए। इसको अगर आप थोड़ा सा एक अलंकारिक आज के युग के अनुसार, आज का जो हमारा संसार चल रहा है उसके अनुसार अगर अलंकार माने, रूपक माने, तो आज के युग के अंदर जो भी इंद्रिय भोग, इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं उपलब्ध हैं, सब मेनका का ही प्रतिरूप है, आकर्षित करती हैं हमको अपने पाथ से, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा निर्दिष्ट मार्ग है जिसपे हमें चलना चाहिए, उसको हमको भटका देती है। परंतु जब हम यहां पर जो है तपस्या की बात कर रहे हैं, रूपाज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हमें कम से कम आज के युग के अंदर चार अवांछित तत्वों से छुटकारा पाना चाहिए, तो उसका क्या अर्थ है, व्हाट इज दी मीनिंग फॉर दैट। कलयुग के अंदर अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि कलयुग में धर्म जो है वो चार खंभों पे टिका हुआ। किसी भी मकान को बनाने के लिए आपको चार कोनों में चार पिलर खड़े करने पड़ते हैं, उसके बिना तीन पिलर पे नहीं खड़ा हो सकता, दो पे नहीं हो सकता, एक पे नहीं हो सकता, चार पिलर चाहिए। तो कलयुग के अंदर भी जो धर्म है वो चार स्तंभों पर खड़ा है। उनमें एक है दया, दूसरा है तपस्या, तीसरा है शुचिता पवित्रता, और चौथा है सत्य। अब अगर हम लोग जो है इस कलयुग में रहते हुए, इस भौतिक संसार में रहते हुए, इन चारों में से एक खंभा खींचेंगे तो उसका क्या है, क्या नुकसान होगा? हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? सामाजिक धर्म की, सांसारिक धर्म की, या जीव के धर्म की? मेरा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो किस धर्म के साथ है? समाज ठीक से व्यवस्थित चलता रहे, ठीक है, आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, पर तभी ठीक चलेगा जब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। तो देश ठीक से चलता रहे तभी चलेगा, जैसे कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भाई राजा कर रहा है, प्रजा कर रही है, तो क्या राजा भी तो कर रहा है, प्रजा कर रही है, तो क्या नुकसान हो गया? अगर आप जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज खड़ी कर रहे हो तो आप भी तो कर रहे हो, तो कैसे उसकी आवाज खड़ी कर सकते हो? अगर हम देश के धर्म के प्रति, समाज के धर्म के प्रति, परिवार के धर्म के प्रति कि अगर हम जो है जागरूक हैं, हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन सा धर्म मेंटेन करना पड़ेगा? अपना। इसका धर्म चाहिए, अपना धर्म चाहिए। तो जीव का धर्म जो है, अगर हमारा अपना धर्म जो है वो स्थापित है, मेंटेन्ड है, तभी हम जो है किसी दूसरे के धर्म के बारे में बात कर सकते हैं कि उसका भी धर्म मेंटेन्ड रहे। तो यहां जो है धर्म, जीव का धर्म क्या है? एज ए जीवा, एज ए आत्मा जो है हमारा धर्म क्या है? धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, कि हमारा धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जीव का धर्म है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और उस भगवान का प्रेम प्राप्त करना है उसकी इंस्ट्रक्शन हमें कहां से मिलती है कि हम भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे? उसका इंस्ट्रक्शन हमें कहां से मिलता है? कौन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं साक्षात कृष्ण। आप भगवत गीता पढ़िएगा, भगवत गीता के अंदर पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। पहला शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द का आधा निकलेगा धर्म, और भगवत गीता का जो आखिरी श्लोक है नीति मति मम, उसका भी आखिरी दो अक्षर लेंगे मम। मम धर्म, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है अर्थात जीव का धर्म क्या है, इसका ज्ञान जो है स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। शास्त्र जो है किसके मुख से उद्भूत हुए हैं? तो ज्ञान कौन दे रहा है? हुज गिविंग दैट नॉलेज? ज्ञान जो है भगवान दे रहे हैं, भगवान स्वयं ध्यान दे रहे हैं कि जीव का धर्म क्या है, और धर्म है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको चार स्तंभ चाहिए जिनके ऊपर आप चढ़ के भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। परंतु अगर हम उन स्तंभों को तोड़ देंगे, उन नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसमें एक स्तंभ है दया। दया का अर्थ क्या है? दया के पहले स्थिति क्या आती है? व्हाट इज द बिगिनिंग? आपने किसी गरीब आदमी को देखा, भूखा, नंगा, कपड़े नहीं है, सर्दी का मौसम है, ठंड में कड़कड़ा रहा है, एक टांग टूटी हुई है, एक हाथ टूटा हुआ है, सड़क के ऊपर भीख मांग रहा है, तो जो आदमी जो है गाड़ी में जा रहा है उसके मन में सबसे पहले करुणा उपजती है, कंपैशन, सबसे पहले करुणा आती है। करुणा फिर दया में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद लगता है इसको कुछ कंबल या इसको कोई शॉल या इसको कोई कपड़ा कोई स्वेटर कोई टोपी कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए और तब जो है आप उसके अंदर दया उपलब्ध हो जाती है। अब यहां एक प्रश्न आता है दया में और कृपा में क्या भेद है, आप उस पर कृपा कर रहे हैं कि उस पर दया कर रहे हैं। व्हाट इज कृपा एंड व्हाट इज दया, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है। हम दोनों शब्दों को साइमल्टेनियसली एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बनाकर यूज कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान हम पे दया करते हैं, फिर हम कहते हैं भगवान हम पे कृपा करते हैं, तो दोनों फिर दया कृपा दो शब्द बनाने की आवश्यकता क्या थी जब एक शब्द से गुजारा हो सकता था। व्हाट वॉज द नीड, जब एक शब्द से गुजारा हो सकता है कि हम पे भगवान दया करते हैं, तो फिर हम यो क्यों शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भगवान हम पे कृपा करते हैं, वाई किस लिए, व्हाट इज द पर्पस। हाँ तो क्या भगवान देना चाहते हैं आपको, प्रेम आपको देना चाहते हैं, तो कृपा क्या हुई, कैसे देंगे प्रेम, अगर आपके भाग्य में कर्मों के फल फलस्वरूप कुछ मिलना है तो आपको मिलेगा। देखिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने भिखारी के प्रति आपके मन के अंदर करुणा जागृत हुई और करुणा जागृत होने के बाद आपको उस पर दया आई। अगर आप जो है किसी भिखारी जो आपके पास आता है उसके ऊपर आप दया करते हो, उसको आप जो है सांसारिक सुख भोग की वस्तुएं उपलब्ध करा देते हो, तो वो उनको स्वयं प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको पता है भीख मांगी फ्री में मिल जाना सब कुछ, इजिली इट्स इजिली अवेलेबल, देयर इज नो नीड टू वर्क हार्ड। कष्ट किसमें है, इजिली अवेलेबल में है कि वर्क हार्ड में है। दया से ऊपर का स्टेप है कृपा, करुणा दया कृपा। कृपा का मतलब यह है कि भगवान आप पे कृपा करते हैं, उस कृपा के रास्ते आपको भौतिक संसार से मुक्त करके अपने धाम में ले जाने का प्रयास करते हैं। और धाम में कैसे जाते हो आप, कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगा, ऐश्वर्य मांगा कि विपदाएं मांगी, विपदाएं क्यों मांगी कि जब विपदाएं आती हैं तो आप स्मरण आते हो, जब आप स्मरण आते हो तो आप आते हो। भगवान कब आए, जब वस्त्र हरण हो रहा था। भगवान कब आए, जब दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे अक्षय पात्र में कुछ नहीं था। उत्तरा के बाद भगवान कब आए, जब उत्तरा कष्ट में थी। जब भी आप पे कृपा होती है तो इसका मतलब यह है आपको भगवान अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस देते हैं, उनका स्मरण हो और आप उनके धाम वापस जाने का प्रयास करें। अगर आपको जीवन के अंदर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलते हैं तो आप भौतिक संसार में उलझते जाते हो, टीवी मिल गया, फ्रिज मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, फार्म हाउस मिल गया, ये मेरे भगवान की दया तुम्हें दिए जा रहे हैं, क्या भैया मेरे से दूर रहे, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे पास आना है तो सब हर लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा तेरे पास, अकिंचन हो जाएगा तब मेरे पास आएगा। शास्त्र कहता है कि भगवान के घर में जब जीव जाता है तो कपड़े भी तो नहीं पहने होता कि पहने होता, कपड़े पहन के जाते हो बिना कपड़ों के जाते हो, इवन वस्त्र भी नहीं चाहिए आपको, एज ए बॉडी आप ट्रांसफर नहीं होते, एज ए सोल ट्रांसफर होते हो, तो सोल को वस्त्र चाहिए क्या, नहीं चाहिए। भगवान जब आप पे कृपा करते हैं तो आपका सब कुछ हर लेते हैं, आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल देते हैं जिससे कि आप भगवान का स्मरण लगातार निरंतर करें और फिर आप भगवान के धाम जाने में भगवान का प्रेम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। पर यहां हम दया की बात कर रहे हैं, दया किस पे करनी है आपको, किस पे दया करनी है, बिगिनिंग में दया करते हैं वो अपलिफ्ट होकर फिर जाती है कृपा की प्लेटफॉर्म पे, तो दया किस पे करनी है, जीवों पे, आपको दया करनी है जीवों पे। और जीवों पे दया करने का अर्थ क्या है कि जीव हत्या नहीं, जीव हत्या नहीं करनी है आपको, सड़क पे भी चलते हैं तो आपको चींटियों को बचा के चलना है, जो आजकल हम चल नहीं पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं उनको देखने का। किसने देखा था चींटियों को बचाने का मार्ग पालकी ढोते हुए? किया ना? क्या हम हैं उस लेवल पे क्या हम करते हैं? अरे भरत ने किया, हम नहीं कर सकते। परंतु फिर भी जो है इस कलयुग के अंदर दया नामक स्तंभ जो है उसको मेंटेन रखने के लिए कहा गया है, और मेंटेनेंस तब होती है जब आप जीवों पे दया करते हो। और सबसे जो आज के डेट में अनर्थ हो रहा है वो क्या है? हिपोक्रेसी है बहुत। पीटा क्या है जी? कि पशुओं के प्रति हिंसा बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी फिल्म के अंदर हाथी इस्तेमाल कर लिए तो उसके ऊपर तो कोर्ट केस हो जाएगा कि आपने हाथियों को प्रताड़ना की गई है। आपने घोड़े इस्तेमाल कर दिए तो आपको उस पर कोर्ट केस हो जाएगा, आपने घोड़ों की प्रताड़ना करी है। आपने काला चीतल मार दिया, पीला चीतल मार दिया, वो हिरण मार दिया तो आप पे प्रताड़ना हो गई। और रोज बकरे मार के खा रहे से वो जीव हत्या नहीं है। वो रोज मुर्गे खाए जा रहे हैं, मछलियां खाई जा रही हैं, वो जीव हत्या नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा। उसके लिए कोई भी आज की डेट में एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसका जो है विरोध नहीं करती। गो हत्या हो रही है, जो बूछरी है उसके अंदर अगर जाके देखेंगे अगर आप उसका ना एक बार कभी आप बूछ, हमें तो एज ए डॉक्टर गया हुआ हूं, एज ए ट्रेनिंग, हमारा जब ट्रेनिंग होता है तो हमको लेके जाते हैं, यू हैव टू सी। तो हमने देखा है वहां पर कि जब आप चलते हो तो खून जो है जैसे कि नालियां बह रही, नाला बह रहा है ना, जैसे नालियों में खून बह रहा है बकरों का जानवरों का, और आप उसके अंदर से पैर रख के अंदर जाते हो, कितना घिनौना फील होता है भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो शास्त्र कहता है कि आपको जो है मर्सी करनी है, आपको दया करनी है, तो दया करने का अर्थ है कि जीवों की हत्या नहीं करनी। अब जीव हत्या नहीं करनी तो आपको कम से कम मांसाहार से दूर रहना है, मांस मुर्गा मछली अंडा वगैरह चीजें नहीं खानी है, इट्स नॉट टू बी टेकन। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर तपस्या। तपस्या का मतलब क्या होता है? मन को वश में करना। तपस्या की जाती है किस लिए? तपस्या का जो मुख्य लक्ष्य है, जो मुख्य एम है, वो है कि आपको अपने मन को वश में करना। और मन अवश कैसे होता? मन अवश होने का मतलब है मन भटकता कैसे? तो मन को भटकाने के लिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप आहार में इस्तेमाल करते हो, आहार खाने में, वो वस्तुएं जो खाने के अंदर इस्तेमाल करने से, अब आहार के तौर पे इस्तेमाल करने से आपका मन भटकता है, अर्थात आप तपस्या नहीं कर पाते हो, मन शुद्धि नहीं कर पाते हो, मन आपका विचलित रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। नंबर दो, वो वस्तुओं विषय वस्तु का प्रयोग जो आप अपनी आंखों से, कानों से, अपने ज्ञान की इंद्रियों से करते हो, वो भी तो इंटॉक्सिकेंट्स हैं। आपने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे दृश्य देख लिए कि आप भौतिक संसार में ज्यादा से ज्यादा उलझते चले गए, तो आप वो कहते हैं ना, ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद फिल्म्स। फिल्म रिलीज होने के दिन पहले दिन पहला शो देखना है इसको, ये तो नशा है इसको फिल्म देखने का। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते नहीं करते? शराब का नशा है, चाय का नशा है, इसको फिल्म का नशा है, इसको नए नए मोबाइल लेने का नशा है, इसको नए नए गैजेट्स खरीदने का नशा है, इसको नई नई गाड़ियां खरीदने का नशा है। मतलब इट इज नॉट कि खाना ही इंटॉक्सिकेंट है, इवन भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं जो आपको इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करती हैं, जो एंजॉय करने में, इंद्रियों का आनंद देने में हेल्प करती हैं, सारी की सारी वस्तुएं इंटॉक्सिकेंट हैं। यू आर इंटॉक्सिकेटेड विद दैट। तो यहां भी चर्चा कर रहे हैं हम कि खाने की वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको इंटॉक्सिकेंट माना गया। साइंस के लिहाज से बात करते हैं हम कि नशीली वस्तुएं साइंस के अनुसार क्या है। शास्त्र की बात करेंगे तो सारी की सारी तामसिक वस्तुएं जो है नशीली हैं। अब साइंटिफिकली बात करेंगे तो जो हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं कि हमारी तपस्या कहां फेल हो रही है, उन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है कि हम लोग शराब, तंबाकू ऑफ एनी फॉर्म, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, कोई भी चीज हो, इट इज इंटॉक्सिकेंट। कई बार लोग सवाल करते हैं, सब आप मशरूम खाने को मना करते हो, दुनिया खा रही मशरूम्स को, जब शादी में जाओ वहां मशरूम बनती है, पार्टी में जाओ वहां मशरूम बनती है, आप उसको कहते हो मना कर दो, व्हाई इट इज सो, किस लिए आप मना करते हो? अगर आप मशरूम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, जो उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें एक प्रूवन है कि अगर आपने मशरूम्स को ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया है तो यू में बिकम अनकॉन्शियस, आप बेहोश हो सकते हो, पॉइजनिंग हो सकती है। साइंस ने प्रूव किया। मैं यहां शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मतलब मशरूम के अंदर इंटॉक्सिकेंट्स अवेलेबल हैं, अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो कुछ मात्रा में जरूर हमारे अंदर जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी उसे कितना टॉलरेट करती है, पर हम भगवान को इंटॉक्सिकेंट्स नहीं दे सकते। तो हमारा प्रण क्या है कि जो भी वस्तु जो है भगवान को अर्पित की जाए उसी को भोग लगा के भगवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो अगर हम जो है मशरूम को भगवान को ऑफर नहीं कर सकते तो खुद कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जब हम तपस्या करते हैं हम उसके अंदर जो है और इंटॉक्सिकेंट्स की बात करते हैं, तो कौन सी चीज आप पीते हो और कौन सी नहीं पीते हो? शराब तो हमने बात कर दी, बोले साहब आपने विनेगर भी मना किया हुआ, विनेगर में क्या खराबी है, उसमें तो कोई नशा नहीं है। विनेगर में नशा है फिर क्यों मना करते हो आप, किस लिए? रीजन, वैलिड रीजन होना चाहिए ना, क्यों मना किया जा रहा है उसको? विनेगर इटसेल्फ प्रिजर्वेंट है, वो उसमें उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता। एसिड जो है, जैसे आप वो डालते हो खाने के अंदर सिट्रिक एसिड, तो प्रिजर्वेंट का काम करता है ना सिट्रिक एसिड, इसी तरह विनेगर जो है प्रिजर्वेंट है, उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। विनेगर की प्रिपरेशन दो तरह से होती है, साइंटिफिकली आप लेंगे, केमिकल केमिस्ट्री किस किसने पढ़ी है। विनेगर की जो प्रोडक्शन है दो तरह से होती है, एक है नेचुरल प्रोडक्शन जो है और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या करते हैं कि आप जैगरी अर्थात जो गुड़ है, राइस है, इस तरह की जो स्टार्च वाली चीजें हैं, उनको आप जो है पानी डाल के और उनको उसमें जो है कुछ थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट वगैरह डाल के उसको आप छोड़ देते हो और उसमें जो है जर्म्स डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन करते हैं। उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर इतनी ऑकवर्ड स्मेल होती है, विनेगर की स्मेल बहुत बुरी है, आप कभी देखिएगा। और जो घड़ा जो घड़े जिसमें जो है विनेगर को पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसका ढक्कन 10-12 घड़े रखे हो कमरे के अंदर और कमरा बंद पड़ा हो और आप जो कमरे में घुसो 5-6 ढक्कन खोल दो तो आपको चक्कर आ जाएगा, इट इज सो इंटॉक्सिकेंट। और फिर उसके अंदर जो है जो कीड़े डेवलप हो रहे हैं जिनकी वजह से विनेगर बन रहा है, इवन द होल प्रोसेस इतना गंदा है कि उस आप विनेगर को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिफिशियल विनेगर है, विनेगर बाजार से लेने जाएंगे तो एक मिलता है जो ब्राउनिश कलर का होता है, मटियाले रंग का, वो नेचुरल जो फर्मेंटेड विनेगर है, और जो आर्टिफिशियल विनेगर है जो व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं, उसमें क्या भेद है? उसको भी नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि प्रोसेस जो है उसका आर्टिफिशियल विनेगर बनाने का भी फर्मेंटेशन से है, और फर्मेंटेशन के अंदर इस विनेगर के बनने के पहले जो सॉल्ट तैयार होता है, जो केमिकल तैयार होता है, वो अल्कोहल है। केमिस्ट्री बढ़ी है। जब ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है आपका, C2H5OH, अल्कोहल। जब अल्कोहल फर्मेंट होती है तब CH3COOH विनेगर निकलता है, मतलब एसिटिक एसिड निकलता है। विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड तैयार हो रहा है उसके प्रोसेस के अंदर पहले अल्कोहल तैयार हुई है, तो आप लाख जतन कर लो उसमें से अल्कोहल की कुछ ना कुछ मात्रा फिर भी रह जाती है, जो कि हमको महसूस नहीं होती, बट इट इज स्टिल देयर। वो भी शराब है। क्या शराब को पीना वैलिड है? नहीं है, तो वी शुड नॉट यूज इट। तपस्या के अंदर और बातें आती हैं, अहिंसा। आप किसी के प्रति हिंसा न करें, मन से, वाणी से, शरीर से। क्या ये पॉसिबल है? कहीं ना कहीं हो जाती है, किसी ना किसी लेवल पे ये हो ही जाती है, चाहे आप जितना मर्जी जतन कर लीजिएगा, आप अहिंसा से बच नहीं सकते, और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, वही तप है। आप अहिंसा जो है या तो खुद करते हो या आप किसी से करवाते हो या आप हिंसा का समर्थन करते हो। मैं तो मुर्गा नहीं काटता, देखो जी, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम प्योर वैष्णव। कोई काट रहा है तो मैं उसको मना भी नहीं करता, इसका मतलब मैं उसे सपोर्ट करता हूं। इवन उसको अपने सामने काटते देख के उसको जो है आप कुछ नहीं कहते हो, तो आप उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप हिंसा का समर्थन कर रहे हो। इवन दैट इज आज तपस्या के लेवल पे फेल हो जाते हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। मतलब हम जो है देखें अगर कोशिश करके, तो हमारे आसपास समाज में जितनी बातें हो रही हैं, हम उनका जो है इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं। वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। अब हिंसा जो है आप तीन भाव से करते हो। तीन भाव हैं हिंसा करने के, एक है क्रोध, एक है लोभ, एक है मोह। तीनों में से आप जो है कोई भी रीजन हो सकता है कि आप जो है हिंसा मोह के वश कर रहे हो। हिंसा जो है मन से हो सकती है, वाणी से हो सकती है, शरीर से। किसी को दुख नहीं देना आपको, ये अलग बात है कि कलयुग के अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु ने मन से द्वारा किए गए पापों को क्षमा किया हुआ है, परंतु टेक्निकली अगर आप मन से भी करते हो तो किसी ना किसी समय पे आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उस वक्त ना हो रहे हो, बट दे रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस, इसलिए उसको भी नहीं करना चाहिए। अब आप क्रोध से कर रहे हो, लोभ से कर रहे हो, मोह से कर रहे हो, मतलब हिंसा तो आपसे हो रही है। अब कितनी करते हो, क्वांटिटी कितनी, मात्रा कितनी, मृदु थोड़ी सी है, थोड़ा सा किया, ज्यादा तकलीफ नहीं दी आपको, थोड़ा सा कष्ट हुआ ना आपको, पर है तो हिंसा। मीडियम, थोड़ा सा मध्यम से लेवल पे आ गए आप, और अधिक, अधिक का मतलब है आपने सामने वाले को घायल कर दिया, मतलब ऐसी स्थिति ला दी, या तो शरीर में हुई उसकी हिंसा तो शरीर टूटा, हड्डियां वड्डियां टूट गई, मांस मांस फट गया, कहीं ना कहीं चोट लग गई, खून बहना शुरू हो गया, घायल कर दिया आपने। और अगर आपने जो है वाणी से करी तो सामने वाले का दिल तोड़ दिया, डंक की तरह आपके वर्ड्स जो हैं उसके ऊपर जाके लगे, वो भी हिंसा है, उससे भी आप बच नहीं सकते। अब दूसरी है कि हिंसा आप करते कहां हो। आप किसी फंक्शन में गए, बर्थडे पार्टी में गए, ऐसे किसी जगह गए, वहां जाके आपने कर दी, आपने जो है किसी पर्सन के खिलाफ कर दी, गुरु के खिलाफ कर दी, एनिमल्स के खिलाफ कर दी, मित्रों के खिलाफ कर दी, रिश्तेदारों के खिलाफ कर दी, आपने जो है हिंसा के लिए त्योहार के दिन में हिंसा कर दी, तो हरेक का अलग अलग इफेक्ट है। धाम में कर दी, कितना रिजल्ट है उसका? धाम में कर दी तो कितना रिजल्ट है? अनंत गुना। रूप आज स्पष्ट लिखते हैं कि वृंदावन धाम इस पर परमहंसस। हम लोगों को दो तीन दिन से ज्यादा वहां पे नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल देता हूं। इट्स रियली उस बात ने मतलब मेरे को खुद को इतना छुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, हम लोग वृंदावन में लोई बाजार में शॉपिंग कर रहे थे। 10 बज के करते करते अब टेम्पल वापस आना था, तो सामान भी हाथ में था, डिस्टेंस भी बहुत है, चलने की हिम्मत थी नहीं, तो रिक्शा हायर करने के लिए किसी को रोका, एक नहीं रुका, दो नहीं रुका, तीसरा नहीं रुका। एक ओल्ड मैन था अपना, कोई होगा 50-1 साल का, और उसने अपना जो है रिक्शा रोक दिया। तो हमने उससे पूछा, भाई अब इस्कॉन टेम्पल चलना है? बोला हाँ जी चलूंगा। उन्हें कितने पैसे लोगे? बोला 40 रुपये लगेंगे। 5 साल पहले 40 रुपये की अहमियत होती थी। हम लोग जाते थे तो 15 रुपये में चले जाते, 10-15 रुपये में चले जाते थे। 40 रुपये लूंगा। तो हमारे साथ जो सज्जन थे, लूटमार लगा रखी है तुमने, ये 15 रुपये दे के आए, तुम 40 मांगे जा रहे हो, मत जाओ जी आप। हम फिर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद ना हमें लगा को दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने उसको बुला लिया, अरे भैया जरा आना ले चलो। बोले 40 लूंगा। हमने कहा ठीक है भैया, 40 देंगे आपको, कोई बात नहीं। तो हम उसके रिक्शा में बैठ गए। तो कहने लगा, आप यहां पर वृंदावन धाम के अंदर आए हैं, भक्ति करने आए हैं या शॉपिंग करने आए हैं, क्या करने आए हैं? तो कुछ नहीं बोले हम। बोले आपने जो है मंदिर गए होंगे, दर्शन किए होंगे, वहां कुछ चढ़ावा चढ़ाया होगा, उसके बाद वहां भी कुछ दान दक्षिणा दिया होगा, फिर आपने यहां पे दुकानदार के पास जो है 1,000, 1,500, 2,000, 500, 400 जो भी शॉपिंग करी होगी। हमने कहा बिल्कुल करी है। जो आदमी आपको अपनी टांगों से जोर लगा के खींच के यहां से मंदिर ले जा रहा है, उसको पैसे देने में आपकी जान निकलती है, और धाम में आप उसको कहते हो कि लूटमार कर रहा है, अब धाम अपराध कर रहे हो। आप खुद जाओ ना, भगवान ने दो टांगे दी है ना आपको, क्यों ले जा रहे हैं आप? धाम में आए हो, पैदल चलो। जब आप धाम में आके रिक्शा कर रहे हो और रिक्शा वाले से कह रहे हो लूटमार कर रहा, भाई हम तो धाम के वासी हैं, हम तो यहीं रहते हैं, यहीं पले, यहीं बड़े हुए, यहीं मरेंगे हम तो, आप तो बाहर से आए, 2 दिन रह के चले जाओगे, कार में खर्चा करके आए, उसके पेट्रोल पंप वाले से आपने नहीं पूछा कितना पेट्रोल महंगा क्यों डालना, कितना डालना, आपने रेस्टोरेंट वाले से नहीं पूछा तेरी थाली इतनी महंगी क्यों है, तेरा प्रसाद इतना महंगा क्यों है, और रिक्शा में बैठे तो आपको लगा कि यहां लूटमार हो रही है। उसके बाद से मतलब मैंने महसूस किया कि हम लोग जाने अनजाने में भी धाम के अंदर अपराध कर जाते हैं, चाहे हम हमारी इंटेंशन नहीं होती अपराध, हम नहीं समझते ये अपराध है, अभी पैसे कम करवा रहे हैं ना, कोई अपराध थोड़ा कर रहे हैं, ये जो मांग रहा है हमें ज्यादा लग रहा है, पैसे कम करवा रहे हैं, पर शब्द ऐसे निकल जाते हैं मुख से कि उस आदमी, उस हमारे साथ सज्जन ने कह दिया लूटमार कर रहे हो क्या, तो ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि वहां भी जो है हम धाम के अंदर खड़े होकर भी हिंसा कर देते हैं, और साथ हम तपस्या के लेवल पे फेल है, हम लोग पास नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग गए धाम के अंदर जाके बड़े बड़े मैंने 20-15 रुपये रिक्शा में बचा लिए, 10 रुपये बचा लिए मैंने, और बंदर चश्मा निकाल के ले गया 1,500, 2,000, 2,500 का, और तोड़ के फेंक गया, उसकी हमें चिंता नहीं है, होता है नहीं होता, चश्मा निकाल के ले जाता है वो, मैं राधा गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर जो है मेरे पास वो एक राधा कुंड की किताब, एक वृंदावन दर्शन की किताब थी राजशेखर प्रभु की, तो मेरे वो हाथ में पकड़ी हुई थी, तो हम लोग जो है उसको लेके दर्शन कर रहे थे। तो राधा गोविंद देव जी के मंदिर की चढ़ाई चढ़ के दर्शन करके वापिस आ रहे थे, तो दुकानें सी बनी हुई है, तो वहां पर एक बंदर ने हमसे किताब छीन ली। अब किताब छीन ली, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रिंट लेमिनेटेड, मतलब बहुत एक मुलायम कागज, तो किताब ही महंगी, मेरे ख्याल 450-500 रुपए की किताब थी वो, और उसने हमसे किताब छीन ली। तो एक दुकानदार था, उसने कहा बाबू जी चिंता नहीं करो मैं दिलवाता हूं। उसने फटाफट जो है कुछ पैकेट निकाला फेंका, तो बंदर ने किताब नाली में गिरा दी। अब देखो उसका हमें तकलीफ नहीं हुई, और रिक्शा वाला 10 रुपए फालतू मांग रहा है, उसमें हमने बहस करनी शुरू कर दी। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जो है चाहते या ना चाहते हुए भी हिंसा कर जाते हैं, क्योंकि हमें इस बात को, टेम्पल में खड़े अभी धाम है, यहां खड़े होकर भी हमको अवॉइड करना चाहिए दूसरे के प्रति शब्दों का प्रयोग। बहुत सारी चीजों को नापतौल के देखना है कि हम लोग कहां कहां गलती करते हैं, कहां कहां मिस्टेक करते हैं। इसके बाद बात आती है शुचिता। शुचिता का मतलब है पवित्रता। पवित्र का मतलब है कि जब मैं अपना संबंध जिनसे मेरा वास्तविक संबंध है उनसे न बना के कहीं ऐसी जगह संबंध बनाता हूं जो मेरे मन को विचलित करता है भगवत भक्ति के मार्ग पे जाने के लिए, वो सारी की सारी बातें जो है आती हैं शुचिता में, क्लीनलीनेस। मन साफ नहीं है, मन में जो है वैर भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, मन में जो है कंटेमिनेशन है, गंदगी है, उसी गंदगी के अंदर इलिसिट सेक्स भी आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। भगवान कहते हैं भक्ति चाहिए अव्याभिचारिणी, जिसमें व्याभिचार ना हो। व्याभिचार का मतलब होता है कि जब एक स्त्री एक पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है या पुरुष एक पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो व्याभिचार कहलाता है। अब इसको और मॉडिफाई करेंगे तो समझेंगे कि व्याभिचार का मतलब है जो अपना है उसके साथ संबंध को छोड़ के जो अपना नहीं है उसके साथ संबंध को बनाना। अपने केवल भगवान है और कोई नहीं है, हम उनको छोड़ के भौतिक संसार में नातेदारों से, रिश्तेदारों से, अपने शरीर से भी अगर संबंध कायम करते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं, इसका मतलब है हम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे तो चढ़ रहे हैं परंतु भक्ति अभी जो है अव्याभिचारिणी नहीं हुई। हमारा संबंध जो है भगवान के साथ ना होके दूसरों के साथ भी बना हुआ है। तो बात वहीं आ जाती है, कृष्ण की भक्ति करते हो, हाँ जी कृष्ण की भी भक्ति करता हूं। कृष्ण की भक्ति करते हो, हाँ जी कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। तो की ही वाली बात ठीक है या की भी वाली बात ठीक है, तो वो कहां है हमारे पास? हमें संबंध जो है हमने सबसे बना रखा है, देश से, समाज से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से, देवी देवताओं से, भूत प्रेतों से, हर जगह, अपने शरीर से। अपने कौन है? राधिका रमन जी, बस कृष्णा, उनसे संबंध तो हमने 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, और बाकी जो 22 घंटे हैं वो भौतिक संसार से संबंध है। तो हाँ, इसका मतलब है हम जो है पवित्रता के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमारी शुचिता नहीं है, हमारे मन में अभी भी कंटेमिनेशन है, लोभ क्रोध वो मत्सर घृणा ईर्ष्या द्वेष सब भरे हुए हैं। तो कहां हम जो है धर्म के 4 स्तंभों का पालन कर रहे हैं? और लास्ट है इसके अंदर सत्य, मतलब सत्य का स्तंभ है वो कब गिरता है? जब हम गैम्बलिंग करते हैं। ट्रूथफुलनेस कब जाती है? जब हम जुआ खेलते हैं। जुए का अर्थ क्या है? भौतिक संसार में ऐश्वर्य भोगने की लालसा करना, इच्छा है वो ऐसा हो जाएगा, चलो ये कर देता हूं वो मिलेगा, ये कर देता हूं वो मिलेगा। मिस टुडे यू आर डूइंग समथिंग, टुमारो यू आर गेनिंग समथिंग, कौन बनेगा करोड़पति, 10 का दम, ऐसे शो आते हैं ना, आते नहीं आते, पैसा लगाओ पैसा लगाओ, लॉटरी लॉटरी लॉटरी, कैसीनो कैसीनो कैसीनो, मीन्स आप जो है एक झूठी आशा में, एक लालसा, झूठी लालसा है कि यस इससे मुझे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? भौतिक संसार भोगने का, वो गैम्बल है। That's a gamble. गैम्बल में सीधा जुआ खेलना नहीं है, क्यों जुआ खेला जाके गैम्बलिंग में आप भौतिक संसार के प्रति इतना आकृष्ट हो कि आज जो कार्य कर रहे हो उसका आप फल कल प्राप्त करना चाहते हो, वो भी एक जुआ है कि आई गेट सुख, मुझे सुख की प्राप्ति होगी इससे। जब आप सिंपल जुआ खेलते हो तो क्या है, लॉटरी खरीदी 10 रुपए की, मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, सुख की लालसा है ना, धन आएगा तो सुख मिलेगा। जब आप आज कोई कार्य करते हो कि मैं आज ये कार्य कर रहा हूं मुझे कल सुख की प्राप्ति होगी, तो वो भी गैम्बलिंग है, गैम्बल कर रहे हो आप, दैट इज ऑल्सो गैम्बलिंग। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जितने भी आपके गैम्बलिंग प्रोसेस हैं उसके अंदर बेसिक नीड क्या होता है कि आप आज जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आने वाले कल में उसका प्रॉफिट गेन करना चाहते हो। पुण्य कर्म करना गैम्बल है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, इट्स गैम्बल। चाहिए क्या, कृष्ण लोक की प्राप्ति, कहां प्राप्ति कर रहे, सुख ऐश्वर्य साधन के मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। पता लगा स्वर्ग तो मिला, नरक और पहुंच गए, गाड़ी की पटरी बदल गई। सो यहां पे कहा जा रहा है कि हमें कठिन तपस्या करनी चाहिए, और अगर हमारे पास गंगा या यमुना पास में हो तो हमें वहां पर स्नान भी करना चाहिए। अब दिल्ली में तो संभव है नहीं, यमुना जी में स्नान करने जाओगे तो वहां तो इतना गंदगी है कि आप कहोगे यमुना जी का अपवित्र कर रखा है इन लोगों ने। यमुना जी में शुद्धता कब आती है, जब बरसात आती है, हथनी कुंड से पानी छोड़ते हैं तो गंदगी बह जाती है, तब यमुना जी साफ होती है, बाकी समय तो उन्होंने यमुना जी में गंदे नाले डाल रखे हैं। परंतु फिर भी आप वृंदावन में, मथुरा में जाके, यमुना जी में घाट के परली ओर जाके स्नान कर सकते हो, आप हरिद्वार में स्नान कर सकते हो, ऋषिकेश में कर सकते हो, बड़गंगा में कर सकते हो, जहां पर जो घाट है घाट से परली तरफ जाना पड़ेगा जहां आपको शुद्ध स्वच्छ शीतल जल मिलेगा। अब ट्राई करके देखिएगा, एब्सोल्यूटली प्योर वाटर। पर यहां रहते हुए स्नान कैसे किया जाएगा, यहां रहते हुए हाउ डू यू डू इट, कहां है गंगा यमुना, कहां स्नान करोगे आप, रोजमर्रा कैसे स्नान करोगे, व्हाट इज द प्रोसेस। गंगा जी के स्नान से क्या फायदा है, चलो एक बात सिंपल बात करते हैं, लेट्स टॉक गीता महात्म्य की बात करते हैं कि गंगा जी के स्नान से क्या लाभ है, किसको मिलती है, नहीं साल्वेशन किसको मिलती है, जो स्नान करता। मेरे को साल्वेशन चाहिए तो आपके स्नान करने से मुझे नहीं मिलने वाली, मिलेगी क्या। प्रजा गीता भागवत रूपी गंगा में स्नान करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपने सुना है 10 को आगे सुनाते हो, तो आपको तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, दूसरे को भी बेनिफिट मिलता है, दूसरे को भी उसका लाभ प्राप्त होता है, ये इस स्नान का फायदा। अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे कि जब गंगा जी में नहाना है भाई, गंगा मुझे जल गंगा जी चाहिए, ये तो चलो हाई हाई क्लास बात हो गई, ये डिवोटी लेवल की बात हो गई, एक साधारण लेवल की बात करें कि मुझे जल गंगा जी का चाहिए, तब क्या करोगे आप। पाद सेवक प्रभु, आपके पास फॉर्मूला है, जब आप जो है जल के अंदर जो है नदियों का आवाहन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, इनसे सीख लीजिएगा। आप जिस जल में स्नान करने जा रहे हैं उस जल के अंदर नदियों का आवाहन करेंगे तो सारी नदियां प्रकट हो जाती हैं, जल में उसका प्रभाव आ जाता है, तो गंगा जी का भी प्राकट्य हो जाता है, यमुना जी का भी हो जाता है, गोदावरी का भी हो जाता है, कृष्णा का भी हो जाता है, सरस्वती का भी हो जाता है, तो आप उसका आवाहन कर सकते हैं। गंगा जल लाके घर में रख सकते हैं, कुछ बूंदे छिड़क लेंगे तो सब गंगा जल बन जाएगा, वो भी एक गुजारे लायक काम है, उसको किया जा सकता है। आप जिस जल में स्नान करने वाले हैं उस जल को जो है छू के, तुलसी माला को छू के, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तब भी वो जल जो है गंगा यमुना के समान ही पवित्र हो जाता है, उससे स्नान किया जा सकता है। मेनी फॉर्मेट्स, परंतु इस जल का स्नान अति उत्तम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जब इसके आप जो है इसके जल में स्नान कर लेते हैं, भागवत के जल में स्नान करते हैं, भगवत गीता के जल, इसके ज्ञान रूपी जल में स्नान करते हैं, तो आप जो सुन के आए हैं, जो पढ़ के निकले हैं, वो दूसरों को बताने में ललायित रहते हैं। फिल्म देख के आओ ना तो मन करता है इसकी स्टोरी सुनाओ, और यार ठीक है, और सुन तो सही यार, कितना बढ़िया काम किया, अरे एक बार सुन तो सही जरा, मतलब जबरदस्ती स्टोरी सुनाने के चक्कर में रहते हो। इसलिए जब आप इसके जल रूपी में स्नान करोगे तो इसका भी जो है आप स्टोरी बताने में लालायित, भक्त बताने में लालायित रहता है, भाई आज ये सुन के आए हैं, ये पॉइंट बताए, बहुत बढ़िया पॉइंट थे, बड़ा मजा आया सुनने, वगैरह 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 करके फिर जो है वो लोगों में इसका प्रचार होता। और वही प्रचार है कारण, आप देखिएगा तो ये कितनी हुई गीता इस बार, 2.25 लाख, 2.25 लाख भगवद गीता एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट होना, एक महीने में, आप सोचिएगा कि कितना कमेंडेबल जॉब है। इसका मतलब है कि आपने इस जल को घर घर पहुंचा तो दिया है, अब उस भाग्यशाली होगा जो इसमें स्नान करेगा। अभी उसने बाल्टी अलमारी में रखी हुई है, स्नान नहीं किया, एक बात अलग है, तो उसने बाल्टी से पानी नहीं निकाला है। पर 2.25 लाख के अंदर से आप निश्चित समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मंदिर में आएंगे। हो सकता है कुछ लोग पढ़ें मंदिर में ना आए, बट डेफिनेटली अगर आज जो है हमारे यहां पर संस्था के अंदर, पंजाबी बाग मंदिर के अंदर भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसका एक मुख्य कारण जो है वो है प्रचार में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम्स करने, घर घर प्रोग्राम्स करने एक से दूसरा कारण है, हरि नाम निकालने, कीर्तन करने एवरी टाउन एंड विलेज एक तीसरा, द सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें जो है प्रभुपाद जी का जो मुख्य लक्ष्य रहा है वो क्या है, भगवद गीता का प्रचार हो, घर घर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पर ये बात निश्चित जानिएगा कि अगर दिसंबर समाप्त हो गया है पर डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा साल कंटिन्यूड है, पूरा साल चलेगा। वो ये है कि जो जोश है, जो गर्म जोशी है, जो एकदम इसे कहते हैं कि एक टारगेट अचीव करना है, तो वो जो टारगेट का अचीवमेंट है उसके लिए एक भगवदगीता मैराथन मंथ रखा गया जो दिसंबर अभी खत्म हुआ है। तो 2.25 लाख इज ए कमेंडेबल जॉब, और सब लोगों को जो है ताली बजा के भक्तों का जो है स्वागत करना है। अब इसमें तपस्या कहां से आ गई, दस बार लोग मना करते हैं फिर एक बार लेते हैं, 10 बार उनके मना को सहना तपस्या, इट्स ए तप। वो है मेरे घर भी गीता रखिया हुई ने मेरे घर भी गीता रखिया हुई ने, अरे प्रभु जी रखी होंगी, ये तो पढ़ के देखो, वो इको जी ने सारिया, मैं थे ना वो 18 अध्याय वाली जड़ी गई ना, वो छोटी जी पतली जी गीता वो पढ़ दिया गया, क्या है उसमें तो महात्म्य की स्टोरीज हैं, उनको पढ़ के अपना समझते मैंने गीता पढ़ ली है, भगवान का संदेश क्या है, भगवान ने कहा क्या है उसको नहीं पढ़ा, शुद्ध भक्त के मुख से की हुई व्याख्या नहीं पढ़ी, मायावादी व्याख्या पढ़ी और कह दिया कि मैं भी गीता पढ़ी हुई है। उनको समझाना, उनको भगवद गीता पकड़ानी, उनसे भगवद गीता पकड़ा के फिर उनसे पैसे लेने, इट्स ए बिग तप, इससे बड़ा तप नहीं कोई, इससे आसान काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम होता है प्रभु जी गंजे आदमी को कंघी बेचना, ये वो गंजे हैं जिनको आप कंघी बेच रहे हो। भगवद गीता जब आप किसी नास्तिक को दे देते हो जो कि भगवद गीता पे विश्वास नहीं रखता उस पे देते हो, तो उसी के समान है जैसे गंजे आदमी को कंघी बेचने के समान है। इट्स सो डिफिकल्ट, पर उस डिफिकल्टी का कार्य करने के अंदर हमें कितनी तपस्या करनी पड़ी है, दिस इज टू बी अंडरस्टूड, दिस इज अ तप, रियल तप है, ये रियल तपस्या है, आसान काम नहीं है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।